Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Omagyan Smirandasya Jnananjana Shkakya Chakshurum Balitam Yena Tasmai Shri Guru Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shrivasa Dhabur Bhakta Vrinda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare. So, ek do bhakto ka hi suggestion tha ki aaj हम रामचंद्र भगवान का कोंगन गाए और फिर और भी कुछ कह रहे थे कि आने वाले एक वीक के अंदर और 3 लेक्चर कर रहे अगर हम रामचंद्र के विषय में, जैसे कि सैटरडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, और प्रयास करें ज़्यादा रामचंद्र का चरित्र सुनने के लिए. 5 मिनट पहले मुझे बोला था तो मैं सोचा कि आज मैं कुछ प्रिपरेशन तो नहीं किया था रामचंद्र के विषय में बोलने के लिए, कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर भी शुरुआत करेंगे, थोड़ा प्रयास करके रामचंद्र के विषय में बताएंगे. चैतन्य महाप्रभु और रामचंद्र में कोई अंतर नहीं है. ये सबसे पहला गुणगान है रामचंद्र का. जय गौर, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ, है ना. कौन है, कौन बताता है ये चीज? वासुदेव घोष, है ना. वासुदेव घोष जो चैतन्य महाप्रभु के समय थे वो वासु घोष. तो वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने गाया है इसी सॉन्ग में पूरबे जे रावण वधिला, क्या याद है, केहो बोले पूरबे रावण वधिला वैकुंठ बोलो केरा वैभव लीला प्रकाश करीला. पूरबे मीन्स पहले, पूरबे मीन्स पूर्व दिशा नहीं, पूर्वे पूर्वे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि यही चैतन्य महाप्रभु ने रावण का वध किया था. रामचंद्र की लीला इतनी गहन है, कौन भी बता रहा था, रावण बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति था उस समय, और जब अंगद गया था या हनुमान गए थे तो रावण का परिचय बार बार वो पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, ऐसे बार बार कह रहा था, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, ऐसे बार बार वो रावण यू नो अपनी शेखी मार रहा था, मैं तो उनको रावण को पूछा, हाँ बड़ा फेमस है ये रावण, सुना है तो बहुत है उसके कारनामे, लेकिन तुम कौन से रावण हो उसमें से वो बताओ. अंगद ने पूछा, तुम कौन से रावण हो उसमें से. एक तो वो रावण हमें हम जानते कि जिसको बलि ने अपनी काख में यू नो दबा के रखा था, वो रावण तुम हो क्या? तुम कौन से रावण हो. फिर वो दूसरा एक रावण हमें याद है कि सहस्र बाहू ने उसको बंदी बना के रखा था, बंदर की तरह बॉल उछल कूद कर रहा था तो उसको बंदर की तरह बांध के रख दिया साइड में, राइट वेदर, वो रावण हो तुम. या फिर और भी कुछ था, और एक चीज बाली तो हाकोक में रखा था, हाँ बाले ने उसको एक झापट मार दी थी, बाले ने पता नहीं किसने एक झापट मार दी थी, तो वो कोसों दूर जाके गिरा था। तो कौन सा रावण, हालांकि तीनों रावण एक ही है, लेकिन वो रावण को बता रहे थे कि तुम कौन से रावण। तो ये रावण बड़ा ही विचित्र प्राणी था, हालांकि उसको प्राणी कहना ज़्यादा उचित है क्योंकि उसका जन्म हुआ था राक्षस कुल में। उसका बाप था ब्राह्मण और उसकी माँ थी राक्षसी, तो उसका जन्म हुआ था राक्षस कुल में। हम रावण का इतिहास आज नहीं बताएंगे, पर क्या पहले दिन रावण, राम का चरित्र गाने की जगह रावण का चरित्र गा रहे हो। लेकिन ये रावण ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण रामचंद्र प्रकट हुए थे, जिसको मारने के लिए राम, राम का मुख्य उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना, मर्यादा की स्थापना करना था और रावण का विनाश करना था। प्रकृति पर जब भी संकट आता है, जीवों पर जब भी संकट आता है, तो भगवान का ये वचन है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान स्वयं आते हैं इन दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवद गीता के चौथे अध्याय में, कुछ भक्त आप पढ़ते होंगे कभी ध्यान से, चौथे अध्याय में आपने पढ़ा कि भगवान प्रकट होते हैं, उसका एक तो ये बाह्य कारण है, लेकिन ये परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, उसमें ऐसे कौन से दुष्कृत है ना, ऐसे कितने और भी कारण है भगवान के प्रकट होने के, किसी को याद है? फिर
मर्यादा पुरुषोत्तम,
फिर
अलग-अलग में रिश्तों के उसका एक उदाहरण सेट करना, भाई के
कैसे
प्रति,
कर सकते हो?
पिता के प्रति।
कुछ ऐसे असुर है जिसका वध कोई नहीं कर सकता, जिसको वध करने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़े, बाकी तो अपने शक्तियों को लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असुर है वो किसी के द्वारा मरते नहीं है, वो केवल भगवान के द्वारा मरते हैं। और भगवान अपने भक्तों को अपनी लीला का आनंद देना चाहते हैं। आप सोचिए रामचंद्र की कथा और उनकी लीला कितनी प्रसिद्ध है कि त्रेता युग में, आज से करीबन लाखों साल पहले, आप सोचिए कम से कम 10 लाख साल होगा, शायद 12 लाख साल, उतना साल पहले रामचंद्र का प्रकट्य इधर हुआ था, यहाँ पर उनका लीला हुआ था। आज भी भारत के जनरली सभी गांवों में, प्रसिद्ध जितने भी, एटलीस्ट नॉर्थ जोन में और इस जोन में, ज़्यादातर हमने देखा है, ज़्यादातर सभी गांव में राम जी मंदिर होता है, एक रामचंद्र का एक मंदिर होता है। कहीं पर भी किसी भी गांव में जाओ, आप पूछो राम जी मंदिर है, हाँ बोले है राम जी मंदिर है, राम मंदिर या राम जी मंदिर या ऐसे कुछ ना कुछ, गुजरात में राम जी मंदिर बोलते हैं, बाहर पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन रामचंद्र का गुण आज भी, कैसे कई गांव है जहां पर रोज रात को गांव के लोग इकट्ठा होकर रामचंद्र का गुणगान करते हैं, राम कथा बोलते हैं एवरी डे। आज भी ऐसे कई गांव है, हालांकि आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पे टीवी घुस गए सबके घर में, लेकिन ऐसे कई गांव है कि आज भी लोग, कॉमन जगह होता है गाँव का, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं और राम का गुणगान गाते हैं, बच्चा बच्चा राम को जानता है। आपने शायद कृष्ण का नाम, राम चैतन्य महाप्रभु का नाम शायद सुना ना होगा, लेकिन राम का नाम तो बचपन से आप सुनते आए हो ना, राम बेटा ये भगवान है, प्रणाम करो, बचपन से आपको सिखाया गया। तो रामचंद्र, और हमारे पॉलिटिशियन भी राम राज्य करते रहते हैं पूरा समय, हम राम राज्य रहेंगे, रामचंद्र की आवश्यकता नहीं है, रामचंद्र थे ही नहीं तो कहाँ से, लेकिन उनका राज्य अच्छा था तो वो लाएंगे राम राज्य। तो कई मूर्ख व्यक्ति भी है जो ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जैसा कोई काल्पनिक पात्र है, कुछ मूर्ख लोग उसको, जो विदेशी लोग है उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, रामचंद्र की लीलाओं को माइथोलॉजी। और हमारे मूर्ख भारतीय जो विदेश को सलाम भरते हैं हमेशा, वो लोग भी माइथोलॉजी बोलते हैं, हाँ ये तो माइथोलॉजी है, मुर्ख तेरा जन्म हुआ है भारत की भूमि में और क्या माइथोलॉजी माइथोलॉजी कर रहे हैं। तो ये इसको मूड बोलते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जाना थी, मैं सब जगह प्रकट नहीं होता हूँ और मूड लोग मुझे जानते नहीं हैं। भगवान ऐसे भी कहते हैं क्या मेरी अवहेलना करते हैं, वो कौन सा है श्लोक, हाँ अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित, अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं जानते नहीं, और इसको क्या सोचते हैं मानुषम तनुमाश्रित, ये तो मनुष्य है। और विशेष करके रामचंद्र के विषय में तो और भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि रामचंद्र तो प्रकट ही हुए थे मनुष्य के रूप में, हालांकि कृष्ण भी मनुष्य के रूप में, लेकिन रामचंद्र ने तो ज्यादातर समय मनुष्य का रोल किया था, भगवान जैसी लीलाएं तो अब जनो चमत्कार के काम बहुत कम किए थे, जैसे कौन बताएगा रामचंद्र के कुछ चमत्कार, सेतु बनाया था, फिर
अहल्या का उद्धार किया,
अहल्या का उद्धार किया था और
धनुष उठा लिया था,
हाँ धनुष उठा लिया, तोड़ दिया, उठा क्या फिर हाँ अच्छा रावण को मार वैसी फिर सेतु बनाने के लिए समुद्र को विवश किया था, भगवान ने कहा रामचंद्र ने कि अगर तुम मेरे आदेश पर प्रकट नहीं होगे और मार्ग नहीं दोगे तो क्या करूँगा,
सुखा दूंगा
अपने बाणों से तुम्हें सुखा दूंगा। तो भगवान रामचंद्र ने ऐसे कुछ कार्य किए थे कि जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, ये बताने के लिए कि मैं ही भगवान हूँ, यू नो डोंट थिंक दैट आई एम मैन, ऐसा नहीं सोचना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भगवान ही हूँ, थोड़े थोड़े समय पर ये काम कर देते ऐसे तो लोगों को यकीन रहेगा कि हाँ यही भगवान है। लेकिन रामचंद्र का प्रकृति तो एकदम मनुष्य की तरह ही, जैसे विलाप करते सीता की, सीता के विरह में रोते हैं और उनको साधारण वनवास प्राप्त हो जाता है और प्रकृति बहुत, जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन में ऐसे ही था, हालांकि मुझे रामायण अच्छा लगता था लेकिन मुझे कृष्ण ज़्यादा अच्छे लगते थे, मुझे इसलिए था कि मैं तो ऐसे समझता था बस छोटा था तब, तो रावण रामलीला रोना ही रोना है पूरा समय, यू नो इसमें कोई ज़्यादा वो यू नो वो हीरो 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 वाले काम बहुत कम है, सो ज़्यादातर मुझे रोना ही आता है, लेकिन इसलिए मैं कृष्ण लीला ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन बाद में जब यू नो मंदिर में जुड़े तब पता पड़ा कि भगवान रामचंद्र की लीला में भी भक्त लोग कितना दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं, यू नो ऐसा नहीं है कि आप रोते रहो, नहीं भगवान की लीला में कभी भगवान तो कभी दुखी होते ही नहीं है, यू नो भगवान दुखी नहीं होते कभी, ये तो नाटक करते हैं हमारे सामने कि कैसे एक मनुष्य तो, लेकिन मूर्ख लोग विमूढ़ा वो लोग क्या सोचते हैं मानुषिम तनुमाश्रित न जानी जान के नाथे काले सवर सुध हो, ऐसा कहा होते गुजरात में बोले जानकी नाथ को भी नहीं पता था कि कल सुबह उसका यू नो वनवास गमन होने वाला है, वो उसको भी नहीं पता था, तो इसलिए ये लोग रामचंद्र की लीला भले सुने पड़े उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे कुछ नहीं, प्रभुपाद उसको कहते थे मूर्ख होते वो कहते हैं ना गुजराती में कहाँ होते भैंस आकर भागवत है, भैंस के सामने भागवत को के बैठोगे और बोले चलो ओम नमो भगवत आदो थोड़ी और सुनेगा उसको क्या करो, वो मूड है विमूढ़ा विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष, वो मूड व्यक्ति वो क्या उसको क्या पता पड़ेगा, वो नहीं समझेगा। पूरा रामायण खत्म होने के बाद बोले सीता किसका पीता था सीता किसका पीता था सो ये लोग ऐसे ही रह गए, तो इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके समकालीन लोग भी उनको समझ नहीं पाते, उनके समकालीन भी। तो आप सोचिए, उनके समकालीन नहीं समझ पाते, तो आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आपको कहता कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, तो आश्चर्य की बात है क्या? है क्या आश्चर्य की बात है? मैं वो कहता नहीं, मैं राम को नहीं मानता, तो इसमें कौन कौन सा बड़ा आश्चर्य? पहले भी रावण हुआ करते थे, आज ज़्यादा रावण हो गए, तो इसमें क्या अंतर है? लेकिन हाँ, पहले जितने रावण को भगवान ने मारा था, आज भी उतने रावण को भगवान मारेंगे। अगर आज 1000 रावण है, 1,00,000 रावण है, तो लाखों रावणों का भी संहार होगा। कई बार मैं सोचता हूँ IAS वाले लोग मार दे रहे, और वो भी वो जैसे वो शिकारी जैसे, बहुत ही क्रूर रूप से मारते हैं लोगों को। अगर आप न्यूज़ में देखते तो बहुत क्रूर रूप से मारते हैं, साधारण मृत्यु दंड नहीं देते, वो तड़पा के मारते हैं। तो इस प्रकार का दंड तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर इसको किस दृष्टि से देखा जाए, तो हाँ, जो पनिशमेंट देने वाले वो तो है ही राक्षस, वो तो है ही, लेकिन जो पनिशमेंट लेने वाले वो भी तो राक्षस होंगे, तभी तो उनको ऐसा मिला। उनको इस जन्म में अगले जन्म में राक्षस बने होंगे, तभी तो उनको ऐसा दंड मिला। तो भगवान प्रकृति के माध्यम से किसी को छोड़ दे नहीं है, सबका संहार करते हैं। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि हम इन लोग को प्रमोट करते नहीं, बट दिस ऑल रास्कलडम, एवरीथिंग इज डिमोनिक। सो रामचंद्र भगवान प्रकट हुए, विशेष उद्देश्य के साथ। रामचंद्र के मुख्य गुणों में एक गुण यह है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रामचंद्र का सौंदर्य बहुत ही विशेष है। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, उसमें शायद रामचंद्र ही पहला अवतार है जिसमें उन्होंने भाई को स्वीकार किया, पत्नी को स्वीकार किया और माता को स्वीकार किया, है ना? ये पहले ऐसा अवतार है। उसके पहले किसी अवतारों में भगवान ने माता या भाई या पत्नी इसे एक सब साथ में स्वीकार किया, ऐसा नहीं है। नरसिंहदेव की माता ही नहीं थी वे किसकी गोद में जाकर बैठे और कौन बिठाएगा उनको अपनी गोद में नरसिंहदेव को, है ना? इसलिए उनको शोक हुआ, ऐसा कुछ हमारे आचार्य कहते हैं कि नरसिंहदेव को ऐसा हुआ। जब पंकज जंगल प्रभु एक बार ऐसे बोले, बोले प्रकट होके आए, बोले माता ढूंढ, माता कहाँ है? पीछे देखा है, यहाँ तो ये तो पिलर है, यहाँ तो माता है नहीं। तो नरसिंहदेव तो उन्होंने बाद में सोचा कि एक माता का जो आनंद है, माता का जो वात्सल्य प्रेम है, वो प्रेम तो कैसे प्राप्त होगा, अब पिलर क्या प्रेम देगा? तो भगवान ने सोचा कि और इतना काफी नहीं था, तो प्रहलाद को गोद में बिठाया। अब प्रहलाद को गोद में बिठाया, फिर भगवान सोचने लगे, प्रहलाद गोद में बैठ गया, मैं किसी गोद में आज तक नहीं बैठा और ये मेरी गोद में बैठ गया, और मेरी गोद में बैठ गया तो इसको कितना आनंद प्राप्त हो रहा होगा। देखो, मैं उसका माथा सूंघ रहा हूँ, सिर पे हाथ घुमा रहा हूँ, उसको चाट रहा हूँ, तो कितना प्रेम प्राप्त होता। तो भगवान की इच्छा थी कि वो माता का प्रेम प्राप्त करे। तो वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए और वात्सल्य प्रेम देने के लिए भगवान ने ये रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, और भगवान ने माधुर्य प्रेम भी स्वीकार किया, लेकिन वो वैकुंठ भक्ति स्वीकार की। रामचंद्र की जो लीला में माधुर्य भक्ति जो है, माधुर्य रस का अर्थ है प्रेमिका का संबंध या पति पत्नी का संबंध, तो वो जो संबंध है वो भगवान ने वैकुंठ धर्म का पालन किया। वैकुंठ धर्म का क्या अर्थ है? ऑफिशियल स्वकीय रस, ऐसा वचन था, एक ही पत्नी स्वीकार करूँगा, दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार करूँगा। तो एक ही पत्नी का उनका व्रत था रामचंद्र का। हालांकि क्षत्रिय को ये परमिशन है कि वो एक से ज़्यादा पत्नी कर सकते हैं, रामचंद्र के फादर को ही थी ना तीन, लेकिन रामचंद्र ने ऐसा व्रत किया कि मैं एक ही पत्नी को स्वीकार करूंगा। तो रामचंद्र के जो फादर थे उनका नाम था महाराज दशरथ। दशरथ उनका नाम क्यों हुआ? हाँ, ऐसा नहीं कि उनको ड्राइव करना आता था रथ दसों दिशाओं में, यू नो, आपको प्रभु मैं भी चार पहिया वाला रथ दस दिशा में घुमा सकता हूँ, नहीं, उन्होंने दस दिशाओं में घूम के रथ को घुमा करके देवताओं की सहायता की थी। कई बार ऐसा होता है कि देवता और दानों में युद्ध होते रहते हैं, और कई बार नहीं, ये चलता ही रहता है, यू नो, फिक्स है, ये चलता ही रहता है, यू नो, ना वो शांत बैठते, ये शांत बैठते, चलता ही रहता है, इटरनल है ये। तो पहले भी एक ऐसे राजा हुआ करते थे, कौन से राजा थे, एक मुचुकुंद राजा थे, है ना, क्या किया था उन्होंने, देवताओं की सहायता किया। नहीं याद आपको मुचुकुंद की कथा? नहीं याद है, किसने नहीं पढ़ा है बताइए, मुचुकुंद की कथा? ओ तेरी, मैं अभी नहीं बताऊंगा। मुचुकुंद महाराज वो बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे और इतने सक्षम थे कि एक बार देवताओं पर संकट आया तो देवताओं ने कहा मुचुकुंद महाराज को कि महाराज थोड़ा हेल्प करोगे आप, थोड़ा राजा थे पृथ्वी के राजा, और मुचुकुंद महाराज मैं पृथ्वी का राजा, तुम देवता स्वर्ग के, तो मैं बोले हाँ क्या करें अभी, हमारा संकट आ गया है तो तुम हेल्प करने के लिए। तो मुचुकुंद महाराज गए उनको हेल्प करने के लिए और बड़ा हेल्प किया, हरा दिया दानवों को, वरदान मांगा, बोलो मांगो जो वरदान चाहिए, मांग लो क्या वरदान चाहिए। तो बोले ऐसा वरदान तो बड़ा थक गया हूँ मैं, सोता ही रहूँ पूरा दिन, और इतना सो जाऊँ, इतना सो जाऊँ कि कोई उठाने आए तो मेरी दृष्टि से जल के भस्म हो जाए, ऐसा आपको कथा याद आ गया होगा मुचुकुंद महाराज का। गुफा में घुस गए, जूनागढ़ के पास मुचुकुंद गुफा है, जूनागढ़ में कोई गया हुआ है? आप तो जूनागढ़ जाते रहते होंगे, आपके पास में ही है वो दामोदर कुंड है ना, जो दामोदर कुंड के तट पे मुचुकुंद गुफा का बोर्ड लगा है, पता नहीं गुफा है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर एक बोर्ड है मुचुकुंद गुफा का। तो या फिर ऐसा मान लेंगे कि वहाँ पर गुफा हुआ करती थी। सो और एक भी एक राजा थे जिसने देवताओं की सहायता की थी, थोड़ा खोलो, थोड़ा हाँ खोलो मेमोरी, थोड़ा खोलो, जहाँ से जहाँ पर भी गए वापिस आ जाओ और सोचो कहाँ कौन से राजा एक से दूसरे से प्रसिद्ध राजा है जिसका श्री प्रभुपाद अपने भगवद गीता के तात्पर्य में सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में उनका उल्लेख करते हैं, सेकंड चैप्टर में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। आप लोग तात्पर्य पढ़ते हो ना भगवदगीता के? क्या करें, हमारे प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत की लाइब्रेरी बनाने के लिए। रात देर देर तक जगते थे प्रभुपाद, उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरी बुक सारी दिखनी चाहिए अच्छे से लाइब्रेरी में। ना बोलो, ये भी मैं बताऊंगा क्या? हाँ नहीं ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको बताना है। हिंट मैं आपको देता हूँ कि राजा ने वरदान मांगा, इंद्र ने कहा बोलो क्या वरदान चाहिए, तो राजा ने कहा कि भाई क्या वरदान, वरदान वरदान करो, मेरे कोई वरदान नहीं चाहिए, वरदान मांगना होता तो तुम्हारी तुम में क्या सकती है, मुझ में, मैं तुम्हारी सहायता करने आया था, वरदान तुम आ जाओ मांगो मुझसे, फिर भी तुम देवता हो मैं मनुष्य हूँ, इसे तुम महान हो मुझसे, लेकिन मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि मेरी लाइफ में कितना टाइम शेष बचा है?
7 दिन बाकी
ना,
कुछ घंटे बाकी
है। इंद्र ने कहा कि एक पल बाकी है बस, जस्ट वन मिनट, बाद में आपकी मृत्यु होने वाला है, और उसी एक मिनट में उन्होंने भगवान की चिंतन किया और भगवत धाम चले गए।
रिलैक्स
यहाँ पर हम थोड़ी कोई गेम खेल रहे
हैं.
Who am I गेम खेलो. पुरुष या स्त्री है ऐसा पूछोगे फिर. आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी. महाराज खटवांग. महाराज खटवांग. महाराज खटवांग. राजा खटवांग. सेकंड चैप्टर में चेक करना, मिल जाएगा आपको. प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं. प्रभुपाद लिखते हैं कि तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं कि कोई पूरा लाइफ भक्ति कर सकता है या महाराज खटवांग की तरह एक ही पल में भगवत धाम जा सकता है. ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है. सो महाराज दशरथ भी ऐसे प्रसिद्ध योद्धा थे कि जिन्होंने, मैं 10 मिनट और बोलूँगा बस फिर कैन स्टॉप. महाराज दशरथ ऐसे प्रसिद्ध योद्धा थे जिन्होंने दशरथ दिशाओं में युद्ध करके उन्होंने देवताओं को सहायता की थी और देवता उनसे बड़े प्रसन्न थे. उनकी इतनी शक्ति थी महाराज दशरथ की कि उनके जैसा योद्धा उस समय संसार में कोई नहीं था, दशरथ जैसा. और वो शब्द भेदी बाण भी चलाते थे. शब्द भेदी बाण जानते हो क्या होता है वो? हम बता दो फिर, जानते हो तो क्या है. जहाँ से आवाज आ रही है उसको बिना देखे उसको लक्ष्य संधान करते थे. अर्जुन भी जानता था ऐसा पांडवों में. राम तो जानते ही थे. मीन्स कहीं इससे भी आवाज आती है तो उसको आवाज को पकड़ करके उसको, जैसे इंद्रजीत और रावण वैसे विद्या यूज करते थे कि वो अदृश्य रूप से वार करते थे, अदृश्य होकर के. आप सोचिए जब मैं रामायण पढ़ता हूँ और रामायण में राम रावण का युद्ध या इंद्रजीत का युद्ध पढ़ता हूँ तो यू नो लाइक उसको उस सिचुएशन को विजुलाइज करते डर लगता है. आप सोचिए कि पूरे मैदान में अकेला लक्ष्मण खड़ा है या अकेला राम खड़ा है और पूरे आसमान में से किसी भी जगह पर कभी से कहीं से भी बाण आ सकता है. यू नो कहीं से भी आगे पीछे कहीं किसी भी दिशा में से कोई भी बाण आ सकता है. सोचिए और उसको उस बाण की नोक को मार के उड़ा देना. सोचिए और वो भी अदृश्य, पता नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या आ रहा है. और फिर भी ऐसी सिचुएशन में ये लोग युद्ध करते थे, लक्ष्मण और राम. सोचो कैसा. आप आजकल के लोगों को बताएंगे तो फैंटेसी है सर, स्वीकार नहीं करेंगे सर. सो लेकिन दशरथ महाराज ने विवाह किया था सबसे पहले कौशल्या से. और कौशल्या से हम ज़्यादा डिटेल नहीं करते अभी इतना, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी 3 ही बचे हैं और रामचंद्र की लीला बहुत बड़ी है. तो कौशल्या से उनकी केवल एक पुत्री प्राप्त हुई थी और कोई पुत्र नहीं मिला था उनको. और एक पुत्र की आवश्यकता थी उनको. फिर उन्होंने सुमित्रा से लग्न किया था और सुमित्रा से एक भी संतान प्राप्त नहीं हुआ. तो वो बड़े निराश थे कि किस तरह से मैं आगे किस तरह से बढ़ूंगा, ये क्या करना चाहिए मुझे. बड़े निराश थे. तो उन्होंने बाद में उनके गुरु के पास हो गए. उनको कहा कि महाराज क्या करूं मैं, वशिष्ठ मेरे एक भी संतान नहीं है, मुझे पुत्र के बिना क्या करूंगा मैं. देवताओं को भी उन्होंने विनती की कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो. मैंने आपकी सहायता की थी सब जगह, तो ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो. तो वशिष्ठ ने उनको सजेशन दिया कि तुम कैकेयी देश जाओ, कैकेयी प्रदेश, और वहाँ पर तुम कैकेयी से उनकी बेटी का हाथ मांग लो. तो ऐसा भी कथा है कि कैकेयी की जो राजकुमारी थी, वो राजकुमारी ने महाराज दशरथ की सहायता की थी युद्ध में. और जिसे राजा को नहीं पता था ये, लेकिन हालांकि प्रस्ताव तो राजा का ही था शादी का, और तीनों रानी में सबसे ज़्यादा सुंदर रानी ये थी कैकई, सबसे ज़्यादा सुंदर थी वो, और उम्र में भी छोटी थी सभी रानियों से, दो ही तो तीन रानियों में। तो सबसे पहले तो हमें ये यहाँ से हमें ये चीज़ प्राप्त होती है देखने से कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए कोई वचन या कोई ऐसा मूल्य नहीं चुका देना चाहिए। जिस कथा से अगर आगे हम सुनते हैं, जैसे कैकई का जो राजा था, कैकई ने उसको कहा कि सॉरी मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता, तो क्या क्या कमी है? दशरथ के साथ विवाह करने के लिए संसार भर की राजकुमारी मरती है, और ये राजा कह रहा है कि मैं मेरी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा, क्या ये घमंड है? नहीं। कैकई ने कहा कि तुम्हारी ऑलरेडी दो रानी है, एक कौशल्या और एक सुमित्रा, और मेरी बेटी अगर तुम्हारे यहाँ पर आएगी तो उसको क्या सुख मिलेगा, क्या वरदान दोगे तुम? उसके बेटे के साथ तो अन्याय होगा, हालांकि आज तुम्हें उसकी आवश्यकता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम अगर तुम्हारा उसका बेटा हुआ भी, उसके बाद किसी कौशल्या या सुमित्रा का बेटा हुआ, तो तुम राज्य तो थोड़ी कौशल कैकई के बेटे को दोगे, वो तो तुम और बड़ी रानी कौशल्या का बेटे को ही तुम राज्य दे दोगे, तो इसलिए मैं ये इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता। लेकिन उस समय ऐसा एक रिवाज था जिसका नाम होता है कन्या शुल्क। क्षत्रियों में ये परंपरा होती थी कि जब रानी का किसी राजकुमारी के सामने अगर कोई राजा प्रस्ताव रखता, तो राजकुमारी का जो फादर होता था राजा, वो कन्या शुल्क का विधि करता था। कन्या शुल्क का अर्थ ये होता है कि जो राजा होता है क्षत्रिय राजकुमार, वो रिटर्न विल दे देता है, लिख के देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को इतनी संपत्ति दे दूंगा, तुम मेरे राज्य का इतना हिस्सा की मालिक वो होगी ऐसे, या फिर तो उसका जो बेटा होगा उसको मैं वो मेरा राज्य भोगेगा, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं कन्या शुल्क में, कुछ भी डाल सकते हो ऐसे। अगर किसी राजा को आवश्यकता होती है तो ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसी प्रथा होती है कि वो लिख के देते हैं कि मेरा जो बेटा हुआ, जो भी पहला बेटा होगा या बेटी होगी, वो जो बेटा होगा वो वापस दिया जाएगा उसको, यू नो, बेटी के जो लड़की के फादर होते हैं उसको, क्योंकि उसको संतान नहीं है। तो इस प्रकार की डील्स होती थी पहले, कन्या शुल्क उसका होता था। तो उसने कन्या शुल्क में कहा कि देखो मैं ये कन्या शुल्क आपको लिख के देता हूँ कि कैकई मेरे राज कैकई जो है वो मेरी सबसे प्रसिद्ध रानी रहेगी, और उसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, वही राज भोगेगा, उसके जन्म के पहले या उसके जन्म के बाद, ये विल बनने के बाद, अगर कौशल्या या सुमित्र के यहाँ पर अगर संतान का जन्म भी होगा तो भी राज तो मैं कैकई के बेटे को ही दूंगा, ऐसा स्टेटमेंट लगाया, ऐसा विल बनाया। तो हालांकि कन्या शुल्क जो है वो एक प्रथा थी उस समय, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कैकई महाराज कितने आसक्त थे अपनी पुत्री में कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उचित अनुचित क्या होगा भविष्य में, लेकिन उन्होंने बस अपना स्वार्थ देखने के लिए, अपनी आसक्ति अपने बेटे 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 के लिए, उसके कारण उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा और स्वीकार किया महाराज दशरथ ने। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि कई बार हमारी आसक्ति जो होती है ना फैमिली मेम्बर्स की, पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति, यू नो, ये जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति कभी कभी गलत काम करवा देती है। इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस चीज़ों के प्रति। आसक्ति चाहे कोई भी हो वो गलत ही है। कई बार हमें आसक्ति होती है किसी सेवा के प्रति, यही सेवा करूँगा मैं, यही सेवा नहीं करूँगा सॉरी प्रभु जी गुड बाय, है ना, ऐसा होता है। या किसी को आसक्ति होती है पोजीशन की, यू नो ये स्थान ये पोजीशन मेरे लिए, ये जगह मेरे लिए, यू नो दिस इज माई, जैसे वनवासी लोग कई बार जो अपरिपक्व होता है वो चला जाता है जंगल में रहने के लिए, घर बार सब त्याग करके वैराग्य हो गए और फिर पेड़ के नीचे आ सकते, ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ इस पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा, उसमें आसक्ति हो जाती। तो ये आसक्ति किसी भी रूप में हो, प्रतिष्ठा के नामना की, पोजीशन की, सेवा की, धन की, इंद्रिय भोग की, अनुयायी गण की, यू नो परिवार के सभ्यों के प्रति, या फिर किसी भी चीज़ में अपनी इच्छाओं के प्रति आसक्ति, यू नो। अभी कल मैं एक भक्त से बात कर, आज भी एक भक्त से बात कर रहा था, तो मैंने स्पष्ट बताया कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि आसक्ति है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इस आसक्ति का काम उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, तो कन्या शुल्क पर सिग्नेचर कर दी दशरथ महाराज ने। दशरथ महाराज भी आसक्त थे कैकेयी के प्रति, और कैकेयी जो थी वो भी आसक्त थी, राजा आसक्त थे अपनी बेटी के प्रति। लेकिन ये कन्या शुल्क की बात केवल तीन लोग जानते थे। एक तो महाराज दशरथ, उनके गुरुजी वशिष्ठ, और तीसरा व्यक्ति था महाराज कैकेयी। और उन्होंने ये डील किया था कि इस कन्या शुल्क के विषय में कोई कभी भी कोई कुछ किसी को नहीं कहेगा, ये तीन लोग ही जानेंगे ऑल टाइम, हमेशा के लिए, भविष्य में कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ऐसा प्रॉमिस किया एक दूसरे को। कौन तीन लोग थे? हाँ, तो बाद में ये डील होने के बाद कैकेयी से शादी वगैरह हो गया, लेकिन दशरथ तो चले गए, और दशरथ और सब प्रॉमिस वगैरह सब हो गया, तो वशिष्ठ वगैरह सब गए, लेकिन एक जगह आसक्ति फिर से बीच में आ गई। महाराज कैकेयी अपनी पुत्री के प्रति इतना आसक्त थे कि पुत्री को बुला करके कान में बोल दिया, बेटा मैं किसी तुझे बताता हूँ, किसी को बताना मत। तो बोले क्या पिताजी? कि दशरथ महाराज ने कन्या शुल्क के यू नो विल में तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को राज्य दिया गया है, यू नो। तो ये कैकेयी ने प्रॉमिस तोड़ दी और अपनी बेटी राजकुमारी जो कैकेयी थी उसने उसको बता दी, और बाद में वही ने उसने अपनी दासी को बताई यही बात, यू नो मंथरा को। हालांकि वो उसने भी प्रॉमिस दिया, कई लोग कई भक्तों की आदत होती है देखो किसी को बताना मत, और सबको बताने के बाद यही कहेंगे सबको, यू नो ये गौरांग प्रभु ये केवल तुम्हारे लिए, किसी को बताना मत, फिर आप जाएंगे आत्मा प्रभु ये केवल आपके लिए, मैसेज तो एक ही होगा ऐसे। तो इस प्रकार, और आप सोचिए कि एक छोटी सी आसक्ति, हालांकि बड़ी आसक्ति है महाराज की अपनी बेटी के प्रति आसक्ति, कितना बड़ा काम किया आगे जाके। 14 साल का रामचंद्र का वनवास का बीज तो यहीं पर रोप गया, है ना, यहीं पर उसका बीज आरोपण हो गया, सोचिए। तो आप सोचिए कितना भयानक परिणाम आ सकता है आसक्तियों का, है ना। इसलिए आसक्ति जितना हो सके उतना हमें हटाना चाहिए, कम करना चाहिए, और अगर हम आसक्ति को नहीं हटाएंगे तो और एक व्यक्ति है आसक्ति को हटाने वाला, कौन है? स्वयं भगवान। वो आपकी आसक्ति को मार मार के हटाएंगे। आप भगवान देखें ये बहुत ही आसक्त है, बहुत ही आसक्त है, ठीक है इसको फटो, यू नो दो चार झपट मार देंगे बैठ जाओगे, फिर रोने लगोगे हाय मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, वो इसलिए किया क्योंकि तुम बड़े ही आसक्त हो गए थे, भगवान नहीं चाहते कि तुम इसमें पड़े रहो फंसे रहो। सो आगे की कथा आगे बताएंगे भी कल परसों जब भी। मैं ऐसा सोच रहा था कि आज आपको मैं अश्वमेध यज्ञ की कथा बता देता हूँ, दो मिनट लगेगा आप चाहो तो, अश्वमेध यज्ञ की। और इफ़ यू वांट वी कैन टॉक लेटर। ये गरीब 5 मिनट आ गए ऐसे 10:28 हुए, फिर 2 मिनट है हमारे पास। सो महाराज ने, दशरथ महाराज बड़े, उनकी बड़ी इच्छा थी कि कह के यहाँ पुत्र जन्म हो, लेकिन कह के यहाँ भी पुत्र जन्म नहीं हुआ। कह के यहाँ पुत्र जन्म नहीं हुआ, इसलिए राजा ने ऐसा सोचा कि हमें, मुझे कुछ तो करना चाहिए। कौन सा युग था चल रहा था? ये त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग का युग धर्म क्या था? तो उस समय यज्ञ ही करना होता था, कुछ भी करना। जैसे समझ लो कि आप करते हो ना, अगर पुत्र जन्म नहीं होता तो क्या करते? कीर्तन करो। संकीर्तन करो, है ना? संकेत सनातन को ज्यादा पता होगा, है ना? नहीं, हमसे ज्यादा जाता होगा अलग अलग जगह, है
ना? पुत्र लब्धि करनी का
कई बार हमारे भक्त भी, यू नो, भक्ति शास्त्र में हरेक आंसर एक ही रूप से लिखते थे। संसार में हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हरि नाम संगीत से यज्ञ ही करना चाहिए, यज्ञ साइकिल हो या योगा लेटर हो, कुछ भी हो, है ना? तो संकीर्तन यज्ञ ही करना चाहिए। सो हरे नाम है वो केवल, सही बात है। और कलो नास्ते वगत चिरंजन था कलयुग में और कोई, लेकिन त्रेता युग में त्रेतायाम यज्ञ तो मखाई। त्रेता युग में केवल यज्ञ होते थे, महान यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ। यज्ञ दो प्रकार के होते थे। कुछ यज्ञ में आहुति दी जाती थी जिसमें अग्नि आहुति स्वीकार करते थे, और अग्नि देव सारी आहुति को इकट्ठा करते थे और सब देवताओं को बांट देते थे। ये लेस मिस ज्यादातर यज्ञ इस प्रकार से होते थे, है ना? यज्ञ आहुति में अग्नि देव सब लेंगे और यज्ञ के माध्यम से दे देंगे। और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि अग्नि जो यज्ञ का यज्ञ है वो भगवान का मुख है, तो भगवान के मुख में आहुति देते फिर वो सब जगह अपने आप बंट जाता है। लेकिन फर्स्ट क्लास यज्ञ उस समय हुआ करता था, जैसे फर्स्ट क्लास संकीर्तन होता है ना, इस युग में फर्स्ट क्लास हरिनाम होता है ना, फर्स्ट क्लास हरिनाम एक ही भक्त कर सकता है, फर्स्ट क्लास हरिनाम, कि जिसका साधना शुद्ध है, जिसका माला का जप शुद्ध है, वही कीर्तन अच्छा कर सकता है। जिसका माला ठीक से नहीं हो रहा, जो सिंसियर नहीं है, जो अपराधों से बचता नहीं है, वो चाहे कितना 10 घंटा कीर्तन करेगा फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कीर्तन अगर अच्छा करना है तो साधना अच्छी करनी पड़ेगी, माला का जब अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपका कीर्तन का क्वालिटी हो। बाकी कीर्तन की क्वालिटी नहीं, जो भी भक्त कीर्तन करना चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए ये चीज़, है ना, कि किस तरह से कीर्तन की क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए। म्यूजिक से इम्पोर्टेंट नहीं है, कीर्तन म्यूजिक से नहीं चलता है, कीर्तन चलता है भक्ति से, है ना, म्यूजिक से नहीं चलता है। सो दूसरा ये फर्स्ट क्लास यज्ञ उस समय ऐसा हुआ करता था जिसमें सारे देवता पर्सनली आते थे, यू नो, पर्सनली शरीर अपने 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 विमान में बैठ के पर्सनली विजिट करते थे। सबके लिए आसन बिछाए जाते थे बैठने के लिए, और सब आते थे और उन सबको आहुति दी जाती थी, उन सबका अपना अपना गिफ्ट लेते थे, आहुति स्वीकार करते और फिर जाते सब एक एक आशीर्वाद दे के जाते थे। तो दशरथ महाराज जो यज्ञ करते थे ना, वो इस प्रकार का यज्ञ था, फर्स्ट क्लास यज्ञ। उनके यज्ञ में हालांकि आना ही पड़े क्योंकि उन्होंने हेल्प भी किया था, तो सारे देवता प्रकट होते थे उस समय दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ बहुत ही मुश्किल है, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। आजकल हम जान देखते हैं कि, यू नो, हाँ, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है वो घोड़ा पर्टिकुलर साइज का होना चाहिए, उसके बाल पर्टिकुलर एक ही प्रकार के होने चाहिए, उसकी पूंछ के नीचे काला हिस्सा होना चाहिए, उसके कान भी विशेष प्रकार के होने चाहिए। यू नो कई बार कहा जाता है उसके कान काले होने चाहिए, घोड़ा सफ़ेद होना चाहिए, उसकी जो खुरी होती है क्या बोलते हैं उसको आप, खुरी, वो 35 एंगल की होनी चाहिए, 35 डिग्री एंगल की, यू नो ऐसे नाप के लिया जाता है घोड़ा भी, 35 एंगल की उसकी होनी चाहिए। और ये घोड़ा जब एक बार मुश्किल से मिल गया उसको किसी को, यू नो सारे उसके लक्षण उसको प्राप्त हो गए किसी को, फिर उसके उसके सिर के ऊपर सोने का एक पत्ता लगाया जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये घोड़ा महाराज दशरथ का है, और वो घोड़ा जाएगा उसके साथ 100 मीटर पीछे बड़ी कार में रहेगी, उसमें सारे जनरल वो कमांडो वो सब होंगे, और वो वहाँ पर जाएगी, जो इसको स्वीकार करेगा तो उसका राज्य स्वीकार किया, जो इसको चैलेंज करेगा कि नहीं मैं नहीं मानता, ये घोड़ा जहाँ पर भी जाएगा वहाँ दशरथ राजा की सत्ता चलेगी, और जो जिस राज्य में इसका अवरोध होता है चैलेंज करेगा अगर नहीं मैं तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो उसको उसी समय पीछे वाली जो आर्मी है उसके साथ फाइट करनी पड़ती है, और उसके अगर वो फाइट में वो हार नहीं गया और फाइट लंबा चला तो ज़्यादा सेना भेजी जाती है, और अंत में कुछ नहीं होता है तो स्वयं राजा आता है युद्ध करने के लिए। तो इस तरह से पूरे विश्व में ये घोड़ा घूमता है, और जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ पर उसकी पताका फैलेगी दशरथ महाराज की। तो ऐसा यज्ञ बड़ा टाइम भी बहुत लगता है, तो अश्वमेध यज्ञ कई दिनों तक चलता है। तो ये यज्ञ कर रहे थे और उसमें दशरथ महाराज ने 60% ऑफ हिज यू नो खजाना, जो भी उसका खजाना था उस 60% जितना खजाना उसने उसमें व्यय कर दिया था। सोचिए कितना महंगा, फिर भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था ये सोने दे दिया, यू नो। और इसके बीच में एक बार यज्ञ में बैठे थे महाराज, और सुमंत करके एक उनका मंत्री था, जानते सुमंत, वो वृद्ध था क्योंकि बचपन से उन्होंने राम दशरथ को देखा हुआ था। तो महाराज ये सुमंत उनका जो मंत्री था उनके पास गया, और सुमंत ने दशरथ के कान में कहा कि महाराज मुझे एक चीज याद आई है, जब आप छोटे थे राजकुमार दशरथ, जब आप छोटे थे उस समय आपके पिताजी राजा थे, वहां पर सनत कुमार, चार कुमार जो है उसमें से एक कुमार आपके घर पे अतिथि के रूप में आए थे, और जब आपके घर पे जो अतिथि के रूप में आए थे तो आपके पिता ने वरदान मांगा था, आशीर्वाद मांगा था कि कुछ आशीर्वाद दो, तो सनत कुमार ने उनको ये आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारा बेटा आगे जाके राजा बनेगा और वो पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करेगा, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ में उनको खीर का वो मिलेगा, पात्र प्राप्त होगा, वो अपनी रानी को खिलाएगा, और उनकी रानी में से उनकी उस तुम्हारे बेटे के यहाँ स्वयं भगवान जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, ऐसा भविष्यवाणी सनत कुमार ने किया था। तो वो याद मुझे अभी अभी आया, इसलिए मैं आपको कान में बता रहा हूँ अभी। दशरथ महाराज ने सोचा पहले बोलना चाहिए था। इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया, वो खुलता है कैसा मंत्री है, अभी कौन सा यज्ञ करूँ, ये करूँ या वो करूँ, अश्वमेध यज्ञ करूँ या पुत्र कामेश यज्ञ करूँ। तो वो दशरथ महाराज बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि उनका लक्ष्य तो एक ही था, पुत्र प्राप्त करना। तो गए महाराज वशिष्ठ के पास, महाराज दशरथ गए गुरु जी अपने वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ को कहा कि भाई अभी अभी मंत्री ने सूचना दी है कि भाई ऐसा मेरे में जब छोटा था, तो क्या ये बात सच है? सनत कुमार हाँ, बोले मैं तो भूल गया था, सच बात है। ये तो सही बात है, ऐसा ही यू नो सही बात है, तुम्हारा पुत्र कामिष्ठ यज्ञ का बात तो हुआ था, ये तो सही है। और वशिष्ठ जितना उस समय जानते थे उतना संसार में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वशिष्ठ को 3 जन्मों का स्मृति था, 3 पीढ़ियों का ज्ञान था उसको, क्या क्या हिस्ट्री बनी थी समझ लो कि 300 साल पुरानी बात है, उसने अपनी आंखों से देखी है, तो उनसे ज़्यादा अधिक नॉलेज किसी के पास नहीं था, वशिष्ठ के पास। तो दशरथ महाराज ने वशिष्ठ को कहा कि क्या करूं मैं, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करूं या ये करूं? तो महाराज ने वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि यही तो भविष्यवाणी हुई है, तो ये काम पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करो। लेकिन पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। पुत्र कामिष्ठ यज्ञ केवल आपके केस में तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, हालांकि पुत्र कामिष्ठ एक ही यज्ञ एक ही व्यक्ति कर सकता है जिसने आज तक कभी स्त्री का दर्शन ही नहीं किया हो, मैरिज के पहले तक, जिसने शादी के पहले तक कभी स्त्री का दर्शन ना किया हो, ऐसा कोई कैसे संभव है? ऐसे भविष्यवाणी भी असंभव टास्क की जाती है। ऐसे कैसी भविष्यवाणी की है, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करो, और पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करने के लिए पुरोहित कहाँ से लाओगे? और पुरोहित ऐसा होना चाहिए जिसको स्त्री का दर्शन नहीं किया। भैया बच्चा जन्म लेगा तो माता का तो देखेगा ना, माता को तो देखेगा बच्चा, लेकिन नहीं, वो ऐसा लड़का है जिसको माता को भी नहीं देखा हो कभी, स्त्री दे स्त्री नाम की चीज पता ही नहीं होनी चाहिए उसको कि स्त्री कौन है। ऐसा व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। दशरथ महाराज बड़े निराश हो गए, कहा कि महाराज गुरुजी क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई पुरोहित इस संसार में हो सकता है? वशिष्ठ ने पूरा बहुत विद्वान थे ना, एनसाइक्लोपीडिया थे, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, सब जानते थे। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है ऐसा जो ये कार्य कर सकता है, जिसने आज तक कभी किसी स्त्री का दर्शन तक नहीं किया, बोले अपनी माता का भी नहीं, बोले ना उसकी माता को भी उसको नहीं, उसको पता ही नहीं है माता क्या होता है, उसको पता ही नहीं स्त्री क्या होती, देखा ही नहीं उसने आज तक कभी स्त्री क्या होती है। ये व्यक्ति पुत्र का मिश्रिय कर सकता है। तो वो व्यक्ति कौन है वो हम आगे बताएंगे फिर, ऋषिश्रृंग सब जानते हो, लेकिन उसके विषय में आगे कथा हम आगे बताएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।